अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, जरा एक 2 मिनट में शुरू करते हैं। कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ دہر کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن والیوم 8 سے، یہ خلاصہ تفسیر چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جی یہ تو پڑھ لیا تھا نا پیج 633 کے اوپر کہ حالات بدلتے رہیں گے، ایک حال میں آرام و لذت کا ہو، یعنی ایک حال کتنے بھی آرام و لذت کا ہو آخر اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے. تو جنت کے اندر بھی ایک حال میں اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے بلکہ مختلف حالات بدلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طبیعت سے سب سے زیادہ واقفیت حاصل ہے. اللہ ہی نے تو یہ طبیعت بنائی ہے، اللہ ہی نے تو ہمیں یہ مزاج عطا کیا ہے. تو نور میں بھی رکھیں گے اور پھر سائے میں بھی رکھیں گے، کیونکہ ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں تو پھر ہم بور ہو جاتے ہیں. تو یہ کس کو ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا جو کہ اس دنیا کے اندر اپنی طبیعت کے تقاضوں کو شریعت کی وجہ سے دبائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ طبیعت اللہ نے بنائی ہے اور طبیعت پہ عمل کرنا یہ ہماری ایک ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ شریعت سے متصادم ہو جائے تو وہاں پر شریعت کو فوقیت دے دینا اور طبیعت کو کے تقاضے کو دبا دینا، یہی دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا آفر کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں ہمیں وہ جنت آفر کرتا ہے کہ جس جنت کے اندر سب کچھ ہماری طبیعت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی ایک ڈیل ہے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی. تو جنت کے جو ہم حالات یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس کے علاوہ اس کے بعد کے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو ان لڑکوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ شاید نہیں پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی ہاں ویطوف علیہم ولدان مخلدون، خلد یخلد تخلیدا خالدین فیہا ابدا. تو خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے، ہمیشہ رہنے والا، اور اسی طریقے سے خلد یخلد کا جو مخلد اور مخلد اس کا اسم فاعل اسم مفعول بنتا ہے، تو مخلدون بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو کہ ہمیشہ پریزرو کیا جائے گا، فار ایور پریزروڈ، فار ایور. ٹھیک ہے، تو یہ اسم مفعول کا صیغہ ہوا نا، تو یہ جو لڑکے ہوں گے یہ ہمیشہ ہی رہیں گے یا ان کو ہمیشہ ہی قائم رکھا جائے گا خدمت کے اوپر جنتیوں کی. اور وہ اس قدر حسین ہیں کہ اے مخاطب اذا رأیتہم کہ اگر تو ان کو دیکھے، حسبتہم تو گمان کرے ان کے بارے میں لؤلؤا منثورا کہ گویا کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے موتی جیسے ہم اس دنیا کے اندر اچھے سمجھتے ہیں. اچھا یاد، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بکھرے موتی جو کتاب ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا یہاں پر. اچھا اس کے بعد فرمایا ہے کہ موتی سے تو تشبیہ صفائی اور اشراق میں، اور بکھرے ہوئے وصف ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے، جیسے بکھرے موتی منتشر ہو کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی تشبیہ ہے. تو یہ جو لڑکے ہوں گے نا یہ چھوٹی عمر کے ہوں گے، یہ جنتیوں یعنی جنتی عورتوں کے خاوندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی عمر کے نہیں ہوں گے، بیکاز وہاں پر جو جوڑے بنائے جائیں گے نا تو جوڑے جو ہے وہ تو اپنے عمر کے حساب سے ہوں گے. عورتوں کی عمر جیسے کہ کچھ روایتوں سے پتہ لگتا ہے 16 سال کی ہوگی، ठीक है, और मर्दों की उम्र जो है वो 33 साल की होगी, 33 ईयर्स। ठीक है, तो अब ये जो लड़के होंगे ना, ये 33 साल वाले लड़के नहीं होंगे, वो तो शौहर होंगे जन्नती औरतों के, ये तो छोटी उम्र के होंगे। तो इनके साथ जो है ना कोई वैसा वाला मामला नहीं होगा जैसे कि किसी औरत का किसी मर्द के साथ होता है, ये तो खिदमत के लिए है खाली। तो इनको देख करके जो है ना वो दिल में जो राहत आएगी, वो जैसे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देख करके राहत आती है ना, ये वो वाली राहत होगी। ठीक, तो आगे फरमाया कि ये आला दर्जे की तस्वीर है, और इन मस्कूरा असबाब तनाउ में इन्हिसार नहीं है। ठीक है, यानी ये जो नेमतें हैं ना, तो जन्नत की सिर्फ यही नेमतें नहीं होंगी, इन्हीं में मुनहसर नहीं होंगी, बल्कि वहां और भी हर सामान इस अफरात और रिफत के साथ होगा कि ए मुखातब व इजा रईता थम्मा रईता, कि अगर तू देखे फिर तू देखे, नईमन व मुल्कन कबीरा, तो नेमत ही होगी और एक बहुत बड़ा मुल्क होगा। ठीक है, यानी ये जो जन्नत का मुल्क है, जन्नत की जो 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 लोकेशन है, ये कबीर है, राइट? इसके अंदर मुबालगे का सीगा, कबीर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह है ये। तो ऐ मुखातब, अगर तू इस जगह को देखे तो तुझको बड़ी नेमत और बड़ी सल्तनत दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये अल्लाह ताला ने जो हमें कबीर मुल्क वहां पर देना है, ठीक है, अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे, ईमान पर मौत अता फरमाए, तो मिलेगा ना फिर ये, तो इस बात पर तो यकीन होना चाहिए, जरूरी है यकीन होना। ठीक है, तो ये किसके बदले अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं? इस दुनिया के अंदर हमने कबीर अमाल किए हैं? कोई कोई ऐसे अमाल किए हैं कि जिसको के कबीर कहा जा सके, राइट? हमारे तो कोई कुछ भी कबीर नहीं है। हम अगर नमाजें भी पढ़ लेते हैं तो कितनी थोड़ी सी नमाजें होती हैं, राइट? अगर हम सदका खैरात भी करते हैं तो वो भी जो है वो अपना सारा का सारा माल तो नहीं दे देते ना, थोड़ा सा माल देते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं अल्लाह ताला के लिए, थोड़ी बहुत कुर्बानी, सारी उम्र जो है वो बगैर कुर्बानी के रहते हैं, अल्लाह की खातिर जो कुर्बानी होती है। ठीक है, ये नहीं कि जो मारे बांधे की कुर्बानियां हमसे निकल रही होती हैं, उन कुर्बानियों की तो बात नहीं हो रही ना, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर जो हम कुर्बानी देते हैं, ये कुर्बानी तो बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है। कभी कोई ऐसा मौका आता है कि जिसके अंदर हम अपनी जान को या अपने माल को या अपने वक्त को खालिसतन अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, तो हमारी कुर्बानी भी बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही कम है। ठीक है, हमारी इबादतें भी बहुत ही कम है और हमारे मामलात भी जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। तो अब अल्लाह ताला इन छोटे छोटे यानी इन सिग्निफिकेंट अमाल के बदले में हमें क्या दे रहे हैं? मुल्कन कबीरा, राइट? इतना बड़ा मुल्क कि जिसको कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसकी बड़ाई। अब इसके ऊपर बच्चों की क्लास में जो आज पिछले अभी कल ही पढ़ा रहा था, तो उसमें एक अजीब बात जहन में आई थी, बच्चों के सामने तो खैर बयान नहीं करी, लेकिन आप लोगों के सामने भी कई दफा ये बात आ चुकी है ना कि जहन्नुम ये दरअसल इस जमीन के अंदर ही है, जैसे कि कुरान और हदीस से पता लगता है कि इस जमीन के अंदर ही जहन्नुम है, और यही जो है ना फिर वो यानी इसका जो गोया के जमीन का छिलका उतर जाएगा, क्रस्ट जो है वो इसका खत्म हो जाएगा, और अंदर से जो 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 इसका यानी मैग्मा है, जो लावा है इसके अंदर, जो इसका लेयर्स हैं, इंतहाई गर्म है, वो शदीद तरीन गर्मी उसके अंदर मौजूद है, तो यही जो है वो जहन्नुम बन जाएगी, यही जमीन। ठीक है, और जन्नत, ये जन्नत किधर है? ये जन्नत है सातवें आसमान के ऊपर का जो एरिया है, राइट? वहां पर जन्नत है। तो आसमान कितने बड़े हैं? ये जो आसमान है, अगर किताबों से इन मालूमात को इकट्ठा करके कंपेयर किया जाए ना, तो आसमानों की जो 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 साइज है, ये साइज इस जमीन के साइज के मुकाबले में ट्रिलियंस भी नहीं, पता नहीं कितने ज्यादा गुना बड़ा, ट्रिलियन भी एक छोटा नंबर है। ठीक है, अगर खाली साइंटिफिक एतबार से भी कंपेयर किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप सूरज को कंपेयर करें इस अर्थ से, हमारी जमीन से, तो सूरज के अंदर इस जमीन जैसी मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं पड़ रहा, 6,000 जमीने या 6 लाख जमीने समा जाएंगी, 6 लाख जमीने। ठीक है, इस सूरज के अंदर हमारी अर्थ इतनी सारी समा जाएंगी, इतना छोटी है हमारी अर्थ सिर्फ हमारे सूरज के मुकाबले में, और फिर उसके बाद जो बाकी गैलेक्सीज आती हैं उनके मुकाबले में हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम यानी दाने के बराबर भी नहीं है, उससे भी छोटा है। ठीक है, तो अगर ये जन्नत, ये जहन्नुम जो है वाकई ये जमीन है, तो कितनी छोटी है ये जमीन। ठीक है, तो अगर वाकई इसी जमीन को ही अल्लाह ताला ने जहन्नुम बना देना है, तो जहन्नुम कितनी छोटी होगी। ठीक है ना, और उसके अंदर जितने भी इंसान जाएंगे, बहरहाल बहुत ही छोटी है ना ये जमीन, तो कितनी बड़ी जहन्नुम होगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जहन्नुम नहीं होगी। ठीक है, जबकि जन्नत कितनी बड़ी होगी उसका तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, इसलिए कि जन्नत जो है ये तो पूरी की पूरी जो भी यूनिवर्स है, नोन यूनिवर्स, उससे भी ज्यादा बड़ी है और कई गुना ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया और इस जहन्नुम को अल्लाह ताला ने इतना छोटा बनाया। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो हर चीज के ऊपर मुहित है, अल्लाह ताला की जन्नत जो है वो अल्लाह ताला की जहन्नुम के ऊपर मुहित है। जन्नत यानी कोई कंपेरिजन ही नहीं है ना इस जहन्नुम का और अल्लाह ताला की जन्नत का। तो भाई अल्लाह ताला का इरादा जो है ना वो तो जन्नत में डालने का है, वो तो हम ही जो है वो खींच तान करके अपने आप को जहन्नुम में डालते हैं, वरना अल्लाह ताला नहीं चाहता कि किसी एक बंदे को भी जहन्नुम में डालें। तो ये जो जन्नत होगी ये बड़ी नेमत और बड़ी सल्तनत तुझे दिखाई दे अगर तू उसको देखे। आगे फरमाया कि आलियहुम तियाबु सुंदुसिन खुदरू व इस्तबरक व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा सक्काहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, के उन जन्नतियों पर बारीक रेशम के सब्ज कपड़े होंगे और दबीज रेशम के कपड़े होंगे, क्योंकि हर लिबास में जुदा लुत्फ है। यानी बारीक रेशम के भी कपड़े होंगे और मोटे रेशम के भी कपड़े होंगे, किसी को बारीक पसंद आएगा, किसी को मोटा पसंद आता है, किसी को शुरू में बारीक पसंद आएगा, थोड़े दिन के बाद कहेगा नहीं मुझे मोटा चाहिए, तो मोटा भी अवेलेबल होगा। ठीक है, अब सब्ज रंग जो है वो भी कैसा सब्ज रंग होगा, जाहिर है एक ऐसा सब्ज रंग होगा जो कि हमें बुरा ना लगे। किसी को अगर ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो अब वहां पे ग्रीन कलर कोई मजबूरी नहीं होगी कि जी ग्रीन ही के साथ आपको गुजारा करना है, बल्कि ऐसा होगा कि हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ग्रीन ही को अल्लाह ताला ऐसा बना देंगे। तो और फरमाया कि उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, चांदी के कंगन, हाथों के अंदर जो चीज पहनी जाती है उसको कंगन कहते हैं। इस सूरत में तीन जगह चांदी के सामान का जिक्र आया है और दूसरी आयात में सोने का, मगर दोनों में तआरुज नहीं है, यानी सोने के कंगन का भी जिक्र है तो यहाँ पे चांदी के कंगन का जिक्र है, तो दोनों में कह रहे हैं कि तआरुज नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों तरह का सामान होगा और हिकमत इसकी वही तफन्नुन और तगैयुरे तबाय व तनअुमात का है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आप यानी फनकारी जिसको कहते हैं ना, यानी सनतकारी फनकारी की इनकी बेहतरीन शक्ल तफन्नुन, ठीक है, फनकारी समझ लें इसको, और तबीयतों और नेमतों का तगैयुर, यानी तबीयतें भी हमारी बदलती रहती हैं और नेमतें भी अल्लाह ताला की उसी हिसाब से बदलती रहेंगी, उनमें तगैयुर होता रहेगा, तब्दीली होती रहेगी। और ये शुबा यानी चांदी के कभी कभी सोने के, कभी दोनों के, कभी किसी तरीके के, जो भी अच्छा लगे। और ये शुबा कि मर्दों को जेवर मायूब है इसलिए मुंदफ़िर है कि हर मुकाम का मुक्तज़ा जुदा है। ठीक है, यानी ये एक जो कोई शुबा करे कि भाई मर्दों पे तो जेवर अच्छे नहीं लगते, तो ये शुबा जो है ना इसको आप दफा कर दें, ठीक है ना, निकाल दें अपने जहन से, क्योंकि हर मुकाम का तकाजा जो है ना वो अलग अलग होता है। यहाँ ऐब होना वहां ऐब होने को मुस्तलजम नहीं है। यहाँ पर आप ऐब समझते हैं, अच्छा यहाँ पर ऐब समझते हैं तो कौन सा, 20वीं सदी में ऐब समझते हैं ना, 21वीं सदी के अंदर ऐब समझते हैं ना, पुराने जमाने में तो उसको ऐब नहीं समझा जाता था। पुराने जमाने में तो लोग जो है वो कंगन पहना करते थे और ये उसके ऊपर फख्र किया करते थे, यानी बादशाह बादशाह लोग जो है उस किस्म की एडोर्नमेंट्स जो है वो एडोर्नमेंट्स पहना करते थे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जमाने का मसला है ना, कि हमारे जमाने में ये चीज अच्छी नहीं समझी जा रही है। ठीक है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे कि इवन जो हम अपने जमाने के फैशंस देखें तो क्या कहते हैं उसको, बेल बॉटम फैशन कहते हैं, वो जो पजामे जो है वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, तो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले यही फैशन था। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में थे तो कुछ अरसे के लिए ये फैशन वापस भी आया था, ठीक है, बड़े चौड़े चौड़े जो है वो पांचों वाले पजामे लोग पहनना शुरू हो गए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे से कभी नहीं पहना, लेकिन पहने लोगों ने, ठीक है। तो ये फैशन तो वैसे ही वापस आते रहते हैं, तो कोई चीज अभी फैशन में नहीं है तो क्या हुआ, बाद में आ जाएगी फैशन में। उसी तरीके से ये जेवर वगैरह भी कोई ऐसी बात नहीं है। और उनका रब जो उनको शराब पीने को देगा, जिसका ऊपर जिक्र आया है, ठीक है, वसकाहुम रब्बुहुम, यानी अल्लाह ताला उनको शराब पिलाएंगे। अब इसके लिए कोई अल्लाह ताला का हाथ आकर के शराब पिलाना ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला का दीदार तो जन्नत में होगा, लेकिन क्या अल्लाह ताला खुद इन लोगों को, जन्नत के लोगों को पिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे? इसके बारे में हमने मशायख से सुना तो है कि हाँ पिलाएंगे, लेकिन किस शक्ल में, किस कैफियत में पिलाएंगे, इसको तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने या बयानुल कुरान में जो तफसीर यहाँ पे नकल की गई है, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो अल्लाह ताला उनको पीने को देगा, यानी फरिश्तों के जरिए से देगा या जन्नती जो मखलूक है उनके उनके जरिए से पिलवाएगा इनको, ठीक है। तो बिलवास्ता अल्लाह ताला इनको शराब पीने को देगा, जिसका ऊपर जिक्र भी आया है, तो वो मिसल शराब दुनिया के, यानी दुनिया की शराब की मिसल नापाक और मजीले अकल व मूजबे खुमार ना होगी। मजीले अकल क्या क्या मतलब? अकल को जायल करने वाली, ठीक है, अकल खराब कर देने वाली। क्योंकि इस दुनिया में जो खमर होता है उसको पी करके इंसान की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो माउफ हो जाती है, ठीक है। और मूजबे खुमार यानी नशा नहीं चढ़ेगा, नशा को वाजिब करने वाली नहीं होगी, यानी नशा का सबब बनने वाली नहीं होगी, ठीक है। दुनिया की शराब बनती कैसे है? नापाक क्यों कहा उसको? शरी तौर पर तो नापाक होती है, लेकिन क्या वो मादी तौर पर भी नापाक होती है? मादी तौर पर यानी बिल्कुल मटेरियल तरीके से अगर आप शराब को देखें तो क्या वो फिर भी नापाक होती है? वो इसलिए क्योंकि शराब एक तो सड़े हुए अंगूर से बनती है, ठीक है ना, यानी जो अंगूर जो है, अंगूर या दूसरी चीजें जिनसे बनाते हैं, तो उसके उसको जब आप पानी में डाल देते हैं ना, तो पानी में डाल करके जब उसके अंदर जो तेजाबियत पैदा हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको, किसी अगर बताएं तो वर्ड, यानी बेसिकली बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो पानी फिर श्योर हो जाता है, तेज हो जाता है, फर्मेंटेशन, जजाकल्लाह, ठीक है। फर्मेंट जब हो जाता है तो फिर वो शराब बनती है, ठीक है ना। और फिर इसको बनाने के लिए जो ये लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं ना बड़े पैमाने के ऊपर, तो वहां तो सफाई सुथराई का भी कोई ख्याल नहीं होता है, बल्कि लोग तो कुछ बाकायदा, यानी नोन फैक्ट है कि अपने पैरों से ना उसको कुचल कुचल करके उसको इसके लिए उसका कचूमर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी जाहिरी तौर पर भी नापाक और बातनी तौर पर या रूहानी तौर पर तो वो नापाक है ही शरी हुक्म की वजह से। तो जन्नत की शराब बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी, ना उसको पी करके नशा होगा और ना अकल किसी की खराब होगी। तो उनको पाकीज़ा शराब पीने को देगा, शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब जिसमें ना नजासत होगी और ना कदूरत। वहाजा कौलिही तआला ला युसद्दूना अन्हा वला युन्ज़िफून, ठीक है, कि इससे जो है ना इनके माइंड जो है वो क्लाउडेड नहीं होंगे। युसद्दऊना, ठीक है, कि उनके दिमाग जो है ना वो जैसे कि एक गुबार छा जाता है दिमाग के ऊपर, ठीक है, बेहोशी का आलम होता है शराब पीने से, गुबार छा जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। वला युन्ज़िफून, युन्ज़िफून का भी मतलब यही है कि यानी वो यानी वो नहीं हो जाएंगे, मदहोश या शराबी जैसा बंदा कहलाता है ना, यानी बहुत ही बुरी बुरी हरकतें करना शुरू हो जाता है, उल्टे सीधे तरीके से जो है वो मौसीकी बजा रहा है या गाना गा रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा होता है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी ना वो बेहोश होंगे और ना जो है ना वो ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाएंगे। और तीन जगह जो सूरत में जिक्र शराब का आया है, हर जगह गर्स जुदा है, जैसा तकरीर तर्जुमे से वाजे है कि हर जगह जो है वो अलग अलग, यानी पहले जो है वो काफूर की आमेजश का तस्किरा था, और उसके बाद फिर एक और जगह कहाँ पर था शराब का, शराब का तस्करा, ये तो तीसरी जगह है ना जहाँ सूरत में शराब का तस्करा था। दूसरी जगह कौन सी थी? काफूर की आमेजश वाली पहली जगह थी ना। खैर जो भी थी, तीन चीजें, तीन तीन मुकामात हैं इसके अंदर। तो फरमाया कि तीन जगहों पर जो सूरत में जिक्र शराब का आया है, हर जगह गर्ज जुदा है। हाँ, सोंठ की आमद है जी, जदाकुना जिंजर जंजबीत, ये दूसरे मुकाम था शराब का इस सूरत के अंदर। तो हर जगह गर्ज जुदा है, जैसे तकरीर तर्जुमे से वाज है। फिर अव्वल में यशरबून है, दूसरे में दूसरी जगह पर युस्कौन है, ठीक है। पहले में क्या है कि ये पियेंगे, और दूसरे में है युस्कौन के उनको पिलाया जाएगा, जो ज्यादत इकराम और एजाज पर दलालत करता है, ठीक है। एक होता है कि भाई बंदे से कहा कि जी आप उठ करके खुद पी लें, बुफे सिस्टम जैसे होता है, खुद जा करके पी लें। एक होता है नहीं, आप अपनी जगह पर बैठे हैं, हम आपको आकर के पिलाएंगे, ठीक है ना। तो है ये दूसरी जगह है युस्कौना वाली, और तीसरी जगह पर सकाहुम रब्बुहुम में नहायत ही तशरीफ और तकरीम है। यानी तीसरा मुकाम ऐसा है कि जैसे कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं या चीफ गेस्ट हैं या उस महफिल के जो सरबराह हैं, वो खास कर किसी के लिए हुक्म करें कि जिस तरह उनको जाकर के पिलाएं। बाकी सबको तो खादिम पिला ही रहे हैं, लेकिन अगर वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो अगर किसी की तरफ पॉइंट करके कहे ना कि जी उनको जाकर के पिलाएं, तो इसके अंदर और भी ज्यादा इकराम होता है। जरा होल्ड कीजिएगा, दरवाजा खुलने वाला है नहीं। तो अब ये तीनों जगह जो हैं वो इनमें तकरार एज सच नहीं है, एम्फेसिस के लिए तकरार नहीं है, बल्कि तीनों जगह जो है वो उनमें तकरार है, लेकिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ सूरतें बयान की जा रही हैं। तो वही कह रहे हैं कि पस तकरार का शायबा नहीं रहा। और इन सब नेमतों को देकर अहले जन्नत से मुसर्रत रूहानी बढ़ाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यानी ये जो दी जा रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें, ये आपकी यानी रूहानी मुसर्रत को और बढ़ा देगी, यानी आपकी तबीयत जो है ना वो और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर से बेहतर फील करेगी। तो फिर कहा जाएगा उनको कि इन्ना हाजा कान लकुम जज़ाउन व कान सअयुकुम मशकूरा, कि ये है तुम्हारा बदला और कमाई तुम्हारे ठिकाने की, ठीक है। यानी तुमने जो कुछ दुनिया में किया है ये उसका सिला है, और तुम्हारी जो कोशिश दुनिया में किया करते थे ना वो मकबूल हुई, और इसके बदले में हम तुम्हें ये सब दे रहे हैं। यानी एहसास भी दिलाया जाएगा कि देखो यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तुमने जो दुनिया के अंदर मलामतें खाई हैं, मुखालिफतें सही हैं लोगों की, राइट, और उसके बावजूद तुम इस्तकामत के साथ दीन के ऊपर डटे रहे हो, डटी रही हो, ठीक है। तो ये उसका बदला है, ये तुम्हें ऐसे ही हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर खैरात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी एक होता है ना, किसी को आप खैरात में कोई चीज दे दें तो उसको उस चीज में मजा तो आता है, लेकिन एक फीलिंग रहती है ना कि भाई ये तो बस एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर, और बस ये यानी मेरी नहीं है एज सच, ये बस एहसानन जो है ना वो मुझे दी जा रही है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो वहां पर अगरचे के वो एहसान कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमारी हमें टू मेक समवन फील कंफर्टेबल होता है ना, आप किसी को जाकर के कुछ खैरात दें, लेकिन साथ साथ आप कुछ ऐसे जुमले भी बोल दें कि उसको गोया के फील हो कि भाई हाँ आप खैरात नहीं कर रहे उसके ऊपर, हालांकि आप खैरात कर रहे हैं। तो ये आप क्यों बोल रहे हैं उसको, ताकि उसकी तबीयत में जो है ना वो थोड़ा सा एक इत्मीनान आ जाए, कुछ वो एक बेचैनी उसकी तबीयत की खत्म हो जाए, ठीक है ना। वो बिल्कुल अपने आप को गोया के बगैर टाइप की चीज फील ना करे। तो ऐसा हो सकता है ना कि आप खैरात दे भी रहे हो लेकिन उसको अच्छा फील भी करवा रहे हो, तो अल्लाह ताला भी खैरात दे भी रहे हैं और अच्छा फील भी करवा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि हम तो उसमें से किसी एक छोटी सी छोटी चीज चीज को डिजर्व नहीं करते, राइट। हमारी नेम हमारी हालत क्या है कि हमारी तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक नेमत को तोला जाए जन्नत, यानी तोला जाए, तो वो जन्नत की किसी एक चीज के भी बराबर नहीं बनती जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी थी। तो हमारे अमाल तो किसी काबिल भी नहीं है। तो अल्लाह ताला बेसिकली खैरात ही दे रहे हैं, लेकिन सिला कह करके दे रहे हैं कि ये देखो तुम्हारा सिला है, और तुम्हारी कोशिश जो दुनिया में हुई थी ना उसको हमने मकबूल कर लिया है, उसके बदले में हम तुम्हें दे रहे हैं। इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, आगे फरीकैन की जजा का जिक्र करने के बाद बतौर तफरी मानवी के आपको तसल्ली देने का बयान है, यानी उन मुखालिफिन के सजा आपकी सजा आपने सुन ली, बस आप उनकी मुखालफत से गम न कीजिए और अपनी इबादत और दावत व इस्लाह के काम में लगे रहिए, कि अलावा ताअत होने के इसमें कल्ब की بھی تو تقویت ہے، اور بیان استعاد کا یہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب اللہ تعالیٰ یہ جو ساری باتیں بیان فرمائی نا، مخالفین کی سزا بھی سن لی اور اب جو ہے وہ جزا کا بھی ذکر کر دیا، جو ماننے والوں کو جزا ہوگی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا۔ ٹھیک ہے، تنزیلن، تنزیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، نزل ینزل تنزیلن، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس کو تنزیل کہتے ہیں، اور ایک دم سے اتارنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ انزل ینزل انزالن، انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سے اتار دینا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انزال کا لفظ استعمال نہیں کیا، نزل بلکہ ہاں انزال کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ تنزیل کا لفظ استعمال کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن اتارا اور اس کا ذکر بھی کیا یہاں پر، تو کیا چیز ریمائنڈ کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنزیل کا لفظ استعمال کر کے کیا چیز یاد دلا رہے ہیں، یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے تو ایک دم بھی پورا کا پورا آپ کے اوپر نازل کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ بہت بھاری چیز ہے۔ قولن ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت میں ہے نا، قولن ثقیلا ہے، یہ بہت ہی بھاری، ویری ہیوی لوڈ ہے یہ آپ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک دم آپ کے اوپر نازل نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ نازل کیا۔ کیوں بھائی، ایک دم نازل کر دیتے تو بھی ہمارا حق تھا، آپ ہمارے بندے ہیں، ہم جو چاہیں کریں آپ کے ساتھ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کی آسانی کی خاطر، آپ کے قلب کو مضبوط آہستہ آہستہ مستحکم کرنے کی خاطر، ہم نے آہستہ آہستہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا۔ یعنی اپنا وہ خیال جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھا، اس خیال کو اس ایک لفظ کے اندر سمو کر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہے ہیں، احسان بتلا رہے ہیں اپنا۔ ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کے آسانی کی خاطر ہم نے یہ کام کیا آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن ہے تو اس میں آپ کے قلب کی تقویت بھی ہے، کیونکہ اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہونے سے نا آپ کا قلب مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ یعنی ترجمہ کیا ہے کہ آپ کے قلب کے ثبوت کے لیے، تثبیت کے لیے ہم نے ایسے اتارا قرآن کو۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا آپ ان کی مخالفت سے غم نہ کیجئے، بلکہ اپنی عبادت اور دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انڈائریکٹلی استقامت کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، استقامت کی طرف، کہ دیکھو اپنی جو نیکی کر رہے ہو نا، اس کو ان کے مخالفت کی وجہ سے چھوڑ مت دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جی جب تک جو ہے وہ کفار آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، جب تک کوئی آپ کو تانے نہیں دے رہا ہے، ملامت نہیں کر رہا ہے، تب تو میں نیکی کروں گا، تب تو میں عبادت کروں گا، تب تو میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، لیکن جہاں مخالفت شروع ہوئی بس ادھر ہی میرے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے اور میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے آپ کا اتنا خیال رکھا ہے نا، تو اس کے بدلے میں آپ بھی استقامت اختیار کیجیے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ جی ہم خود تو اپنے گھر کے اندر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ شریعت و سنت کا لحاظ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کسی دوسرے کے گھر گئے، جہاں کسی پارٹی میں ہمیں انوائٹ کیا گیا، وہیں جو ہے نا وہ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو شریعت ہم نے اپنے اوپر لاگو کی تھی، گویا کہ وضو کیا تھا ہم نے، طہارت، شرعی طہارت حاصل کری تھی، وہ طہارت جو ہے نا وہ اگلے بندے کے گھر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کا پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو سنت کے مطابق ہمارا ایک زندگی گزارنے کا ارادہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کیجیے گا لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کیا تنزیل قرآن مکمل کتابی شکل میں ہوئی؟ तंजील कुरान मुकम्मल किताबी शक्ल में कैसे हुई? ये तो तंजील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना, ठीक है? तो ये थोड़ा थोड़ा करके उतारना कहाँ से कहाँ तक हुआ था? इंजाल, कुरान का इंजाल भी हुआ था, कुरान का तंजील भी हुआ था, ठीक है? तो इंजाल कहाँ से कहाँ तक हुआ था और तंजील कहाँ से कहाँ तक हुआ था? किसी को पता याद है? किसी को बात तो हो चुकी है पहले वैसे क्लासों में। हाँ इंजाल कहाँ से कहाँ तक और कब हुआ था ये भी आप बता सकते हैं। इन्ना अंजलनाहु, वहां पर तो इंजाल का तذکرہ है, इन्ना अंजलनाहु, अंजलना, ठीक है? लोहे महफूज से इंजाल हुआ था कहाँ तक? लोहे महफूज में इंजाल हुआ था, में नहीं हुआ था, से इंजाल हुआ था। पहले लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इंजाल हुआ था, जिसको पहला आसमान कहते हैं, ठीक है? ये इंजाल हुआ था, और ये कब हुआ था? इन्ना अंजलनाहू फी लैलतुल कद्र, ठीक है? लैलतुल कद्र के अंदर ये इंजाल हुआ था। फिर उसके बाद आसमान दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर ये तंजील हुआ था 23 साल के अंदर, ठीक है? स्लोली स्लोली खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से आकर के मुजादला किया कि मेरे शौहर ने जो है वो मेरे साथ जिहार कर लिया है, हैं तश्तकी इलैही, हैं उन्होंने शिकायत करी फिर अल्लाह ताला से कि नबी अलैहिस्सलाम तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है ना? तो उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से शिकायत कर दी, अल्लाह ताला ने आयात उतार दी, सूरह मुजादला की आयात, राइट? कद समिअ अल्लाहु लती। तो ये क्या हो रहा है? ये तंजील हो रही है आसमान दुनिया से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन ये ऊपर से आसमान दुनिया तक ऑलरेडी पहुंच पहुंच चुका है लैलतुल कदर के अंदर, ठीक है? तो ये जो मुकम्मल किताबी शक्ल में तो खैर क्या हुआ था ये, यानी इंजाल जो हुआ था लोहे महफूज से आसमानी दुनिया में, तो अब वो आसमानी दुनिया में किस शक्ल में उतरा था ये तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, ठीक है? क्या वो कोई किताब की शक्ल में वहाँ मौजूद था या वो किसी और शक्ल में अल्लाह ताला ने वहाँ रखवाया था? पहले लोहे महफूज इंजाल कुरान का पूछना था कि क्या ये किताब है। हाँ तो इसका जवाब तो फिलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा, अगर कभी पढ़ा सुना भी था तो भी अभी जहन में नहीं आ रहा, ठीक है? आगे कहते हैं कि हाँ दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि जैसे आप लोगों के सामने कई कई दफ़ा ये बात हुई है ना कि भाई दावत और तबलीग का काम जो होता है ना ये तो बड़े के हुक्म पे किया जाता है, ठीक है? यानी जब हमारा जो बड़ा होता है जिसको कि हमने अपना शेख बनाया होता है और अपना यानी शेख माना होता है या अपना मेंटोर माना होता है अंग्रेजी में कहना चाहें तो, राइट? तो उसके हुक्म के ऊपर दावत और तबलीग का काम जो होता है ना ये सही काम होता है। अमीर के हुक्म पर बोल दें उसको, तबलीगी जमात वाले उसको कहते हैं अमीर के हुक्म पर, ठीक है ना? और तसव्वुफ वाले कहते हैं शेख के हुक्म पर, और मदरसे वाले कहते हैं कि जी अपने उस्ताद के हुक्म पर, ठीक है? तो ये तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ नेम्स हैं, उस्ताद बोलें अमीर बोलें या शेख बोलें बात एक ही है, यानी बड़ा, जिसको हम बड़ा कहते हैं, बड़े के हुक्म पर दावत और तबलीग का काम किया जाता है, ठीक है? तो भाई दावत और तबलीग का काम जब भी किया जाता है ना तो लाजमी नतीजा होता है कि उसके ऊपर मुखालफत होती है, ठीक है ना? लाजमी नतीजा होता है कि लोग मुखालफत करते हैं, आपके तरीके की मुखालफत करते हैं, आपकी दावत के ऊपर मुखालफत करते हैं, आप जो लोगों को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते हैं तो उसके ऊपर मुखालफत करते हैं। तो जब मुखालफत होती है ना तो ये जो शख्स बड़ों के हुक्म पर दावत का काम कर रहा होता है ना तो फिर ये पलटता है अपने बड़ों की तरफ, ठीक है? बड़े की तरफ रुजू करता है और बड़ा जो होता है फिर उसकी उसको तसल्ली देता है, तसल्ली, ठीक है ना? उसको इनकरेज करता रहता है, उसके साथ जो है वो मीठे बोल बोलता रहता है और उसको याद दिलाता रहता है कि भाई ये जो आपको मुखालफत हो रही है ये पहले भी मैंने जिन लोगों को भी दावत का हुक्म दिया है ना उनको भी मुखालफत हुई थी, तो ये पहली दफा आपके साथ नहीं हो रही है, तो इस सिलसिले का इस तरीके की का लाजमी जुज है, ठीक है? तो इसके जरिए से फिर क्या होता है कि दावत देने वाला जो होता है ना उसको इस्तेकामत के साथ अपने काम में डटे रहने में आसानी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पलटने वाला, पलट करके तसल्ली के लिए रुजू करने वाला कोई ना हो दावत देने वाले के लिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर डटना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और फिर जो है ना फिर वो राह रास्ते फिर वो हट हट भी जाता है कभी, ठीक है, क्योंकि इतनी मुखालफत होती है, इतनी मुखालफत होती है कि फिर वो कॉम्प्रोमाइज का रास्ता अख्तियार करना शुरू हो जाता है, और कॉम्प्रोमाइज का मतलब जो है ना फिर वो अक्सर जो है फिर गुमराही की शक्ल में निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से ना बड़ों के हुक्म पर दावत देने के बहुत फायदे होते हैं। ये तो एक फायदा है खाली कि तसल्ली मिलती रहती है, याद दहानियां मिलती रहती हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला और नबी अलैहि सलाम का जो रिश्ता था वो भी यही था, अल्लाह ताला शेख, नबी अलैहि सलाम अल्लाह ताला के मुराद, मुरीद भी नहीं कह सकते, राइट, नबी अलैहि सलाम तो मुराद इलाही थे, ठीक है ना, लेकिन मुरीद भी थे और मुराद भी थे, ठीक है। तो हम अपने समझ के खातिर चूंकि मुरीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, शेख के साथ मुरीद का ताल्लुक, तो हम यहाँ पे कह दें कि नबी अलैहिस्सलाम मुरीद थे और अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के शेख थे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत होती थी तो अल्लाह ताला देखें मुस्तकिल जो है वो तसल्ली अपने कुरान के जरिए से, तसल्ली और कुरान के अलावा भी रूहानी तजल्लियात के जरिए से तसल्ली नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दावत का काम होता है ये इस ताल्लुक के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ये कि हमने आप पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि थोड़ा थोड़ा लोगों को पहुंचाते रहें और उनको इससे फायदा उठाने में आसानी हो, जैसा कि सूरह इसरा के आखिर में है, इसरा और मेराज वाली सूरत के आखिर में है, वह कुरआनन फरक ना हो इलल आखिर। सो आप अपने परवरदिगार के हुक्म पर कि इसमें तबलीग भी दाखिल है मुस्तकिल रहिए, ठीक है, यानी मुस्तकलन अपने काम करते रहिए। नबी अलैहिस्सलाम का जो काम था वो इंडिविजुअल इबादत भी था, तालीम का काम भी था दूसरों को, राइट, दूसरों का तज़किया करना भी था और तबलीग तबलीग भी था, ठीक है। तो चार जो काम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के बार बार बताए हैं तो उनमें दावत व तबलीग, ठीक है, और उसके अलावा तज़किया, और उसके अलावा तालीम, और उसके अलावा हिकमत सिखाना लोगों को, ठीक है। तो इन सारे कामों के अंदर ना आप मुस्तकिल रहिए और इनमें से किसी फासिक या काफिर के कहने में ना आइए, यानी ये जो तबलीग से मना करते हैं, कमा फिद दुर्रिल मंसूर मिन सूरतिल काफिरीन, ठीक है, सूरह काफिरीन की तफसीर के अंदर दुर्रिल मंसूर में ये लिखा हुआ है कि ये नबी अलैहिस्सलाम को ना मना करते थे कि आप ये तबलीग का काम ना करें, ठीक है, तो आप उसकी मुवाफिकत ना कीजिए। मकसूद इससे इजहार एहतमाम शान है, ठीक है, यानी ये जो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं ना कि आप इनकी मुवाफिकत ना कीजिए, तो ये इसलिए नहीं कर रहे कि नबी अलैहिस्सलाम से कोई तवक्कु थी अल्लाह ताला को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मुवाफिकत कर जाएंगे, नहीं, बल्कि सिर्फ इजहार एहतमाम शान है, ठीक है ना, यानी अब ये जो मुवाफिकत ना करना है इसकी अहमियत का मजीद इजहार करना है, ठीक है, वरना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुवाफिकत करने का कोई एहतमाल ही नहीं था, ये तो इबादत मुतदिया का अमर हुआ, ठीक है, कि जो इबादत अल्लाह ताला ने इनके ऊपर यानी लाजिम करी है तो इसका हुक्म हुआ, और आगे इबादत लाजिमा का अमर है। एक्चुअली मुतदिया से मुराद यहाँ पर वो ग्रामर वाला होता है ना, फेल लाजिम एक होता है, एक फेल मुतदी होता है, ठीक है, फेल लाजिम वो फेल होता है कि जो कि फाइल पर ही पूरा हो जाए, यानी वो काम जो कि इंसान अपनी जात में करे जिसको कि इनफरादी इबादत कहते हैं, तो उसको उसको इबादत लाजिमा कहा जा सकता है, ठीक है ना, कि भाई अपने अपने अंदर अकेले अकेले इबादत कर रहे हैं, और इबादत मुतदिया उस इबादत को कहेंगे कि दूसरों को तरगीब दी जा रही है, दूसरों को तलकीन की जा रही है, जैसे कि फेले मुतअद्दी होता है कि जो फाइल पर पूरा नहीं होता बल्कि मफूल पर जाकर के पूरा होता है, ठीक है, तो वही इबादत मुतदिया हो गई। जो ग्रामर पढ़ चुके हैं यहाँ तक तो उनको ये बात समझ में आएगी, बाकी फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। बहरहाल تو آگے عبادت لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح اور شام نام لیا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ٹھیک ہے، بکرا جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، اصیل شام کو کہتے ہیں، اور لیل رات کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رات کے کچھ حصے کے اندر آپ سجدہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف اور پاکی بیان کیجئے اس کی بڑی رات تک، یعنی لمبی ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے اور نماز بھی پڑھیے، کچھ ٹائم یعنی رات کا کچھ ٹائم نماز بھی پڑھیے۔ تو رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح و تقدیس کیا کیجئے، مراد اس سے تہجد ہے، علاوہ فرائض کے اور آگے تقویت تسلی کے لیے ایک اور مضمون ہے جس میں کفار کی مذمت بھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی اصل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ، وہ ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی تہجد کی جو نماز ہے نا، تو یہ جو ہے وہ اول العزم لوگوں کی سنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اول العزم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام نیکوں سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آگے بڑھے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے نا، زیادہ ایڈوانسڈ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اول العزم کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء تو 124,000 ہیں، لیکن اول العزم انبیاء یہ کتنے ہیں؟ 6، صرف 6۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ کل 6 ہو گئے، ان سب کے نام آپ کو سب کو پتہ ہی ہیں، 6، رائٹ۔ تو یہ اول العزم ہے، آگے بڑھے ہوئے لوگ۔ اسی طریقے سے عام لوگ یعنی عام نیکوں میں، امتی عام نیکوں میں سے جو زیادہ بڑھے ہوئے نیک لوگ ہوتے ہیں تو تہجد جو ہے نا پھر وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس تہجد کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ یہ تہجد جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ایسے نہیں پڑھنی چاہیے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے فجر قضا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کہ رات جو ہے وہ تہجد پڑھتے رہے اور اس کے بعد جو تھک ہار کر کے سوئے فجر قریب، جیسے کہ سنت بھی ہے کہ فجر سے پہلے تھوڑی دیر نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، تو اب یہ صاحب جو ہیں وہ پوری سنت کروں نا، میں تہجد بھی پڑھی ہے، سنت ہے جو کہ، تو چلو میں پھر نیند کی سنت بھی کرتا ہوں، تو اب نیند کی سنت کرنے جو لیٹے نا، تو اب آنکھ جو ہے وہ پھر صبح 7 بجے کھل رہی ہے، فجر کی یعنی اشراق کے وقت کھل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو وہ تو ایکسیپشنز کے اندر آتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کے احوال ایسے ہیں، اوقات اور ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آپ کے لیے سونا ضروری ہے تہجد کے بعد، ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ فنکشن نہیں کر سکیں گے اس کے بعد، تو فجر کو رسک میں ڈال کر کے تہجد پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر مزید یہ کہ چلے فجر تو آپ پھر بھی تہجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہی تہجد آخری وقت میں اٹھ کر کے پڑھی اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز بھی آپ کو ملی گئی کیونکہ بیچ میں آپ سوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو آپ کی کم خوابی ہوئی ہے نا، اب اس کم خوابی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دن کے اندر کچھ آپ کے اوپر فرائض تھے، کچھ واجبات تھے، وہ بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے دور، ہمارے زمانے کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نیند ہماری نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے نا پھر ہماری ذمہ داریاں بہت شدید طریقے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا نیند ہماری کیوں نہیں پوری ہوتی؟ پچھلے زمانے کے لوگوں کی نیند پوری کیوں ہو جاتی تھی؟ بھائی وہ بھی انسان ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، ہم سے تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہوتے تھے، لیکن اتنا زیادہ فرق کیوں ہوتا تھا کہ ہماری تو تہجد کی وجہ سے نیند کا بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے، ان کا نہیں ہوتا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ ہی کی کلاس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، رائٹ، سورہ نبا کے اندر ایک ٹاپک تھا، کیا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ کیا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، ٹھیک ہے، یاد ہے وہ ڈسکشن کہ اللہ تعالیٰ نے جو لیل کو بنایا وہ سبات بنایا۔ سبات، سبات کیا چیز تھی؟ کہ جو کہ تھکن کو ختم کر دیتی ہے۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ تھکن کو ختم کر دینے والی نیند۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا تھا اور نیند کو परेशानियां और तकलीफें खत्म करने के लिए बनाया था, सुबात बनाया था, काट देने वाली चीज, ठीक है। लेकिन हम जिस जमाने में रहते हैं, इस जमाने में रात कब होती है भाई? मगरिब होने के बाद रात हो जाती है हमारे हमारे जमाने में, या चलो ईशा के बाद रात हो जाती है, कोई रात नहीं होती। ईशा पढ़ते हैं कुछ लोगों की तो रात उसके बाद भी शुरू नहीं होती, उसके बाद कहीं जा करके बड़ी देर के बाद फिर रात शुरू होती है। अच्छा जी, अब सोने का वक्त है, अब जो है कल सुबह उठना भी है और दफ्तर भी जाना है और बच्चों को स्कूल भी जाना है, राइट। 10 बजे जो है वो शोर मचना शुरू होता है कि जब सोने की कोशिश करनी चाहिए, और वो 11-12 बजे तक स्कूल जाने वाले बच्चे सो जाते हैं, 11 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है ना। और जो बाकी बड़े लोग होते हैं तो वो तो 12-1, कुछ घरों के अंदर तो गुफ्त शुनीद स्टार्ट होती है 12 बजे, है बच्चों को सुला उला के काम काज से बर्तन वर्तन सब कुछ अपनी जगह पे रख करके जब मियाँ बीवी बैठे तो अब जो है ना वो कुछ जरूरी जरूरियात जिंदगी के ऊपर बात करने का मौका मिलता है। तो वो 12-11-1 इस तरह का जो टाइम होता है हमारा सोने का, तो उसके बाद फिर आपकी नींद कैसे पूरी होगी अगर आप तहज्जुद में उठ जाएंगे तो, राइट। तो नींद तो पूरी नहीं होगी ना, जब नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सारा दिन आपका कैसे गुजरेगा? सोते में गुजरेगा, जमाइयां लेते हुए गुजरेगा, ठीक है। किसी काम के अंदर आप फुल फोकस नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाते फोकस, क्योंकि दिन में फिर सोना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। दिन में जो है वो आपने दूसरे काम करने होते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर या जो आप मर्दों ने दफ्तर जाना होता है, उसके अलावा फिर ग्रोसरी शॉपिंग करनी होती है, फिर जाने क्या क्या काम करने होते हैं, तो नींद कहाँ से पूरी होगी? 6 घंटे की नींद एक एवरेज नींद होती है बंदे की, 6 घंटे की लगातार। और ये लगातार नींद जो है ना 6 घंटे की, ये रात में 6 घंटे होते हैं। दिन में अगर आप लगातार 6 घंटे सो भी जाएं, जो कि मुमकिन नहीं है दिन में 6 घंटे सोना, ठीक है, लेकिन अगर कोई 6 घंटे दिन में सो भी जाए ना, तो उसकी नींद की वजह से उसकी परेशानियां वैसे दूर नहीं हो सकती जैसे कि वो रात के 6 घंटे में दूर होती, ठीक है ना। एक तो कुरान के ऊपर ईमान रखने वाले के लिए ये आयत ही काफी है, वजअलना लैला सुबाता, कि रात को हमने बनाया इस काम के लिए, ठीक है ना। तो दिन में तुम सो करके 6 घंटे तुम वो चीज हासिल ही नहीं कर सकते, इसलिए कि दिन को हमने इसके लिए बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो जब यानी मोमिन के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन अगर आप साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हैं और ऑब्जर्वेशन हैं उनके बेसिस पर भी अगर आप देख लें तो दिन की नींद जो होती है उसके अंदर ये चीज होती ही नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात, ठीक है। तो अब जो है वो माशाल्लाह सूफी हजरात जो हैं वो इस बात को असल में चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं कि हजरत जी जो है ना वो बयान के अंदर हमारा भी तज़किरा करें कि ये तो वो लोग हैं कि जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हैं। जब सुनेंगे हजरत जी के नाम के जुबान से जब ये अल्फाज अपने बारे में तो कितना मज़ा आएगा, राइट। तो अब उस मज़े की खातिर जो है ना फिर हम तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उस मजे की वजह से ना फिर आपका सारा का सारा फिर मामला बदमजा हो जाता है, ठीक है। और इसका ताल्लुक, इसका असर जो है वो अपनी सेहत पर भी पड़ता है और इसका असर फिर दूसरों की सेहत पर भी पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर दूसरे लोग भी डिपेंड करते हैं, खुसूसन बच्चे, राइट। तो जब आप खुद सोते सोते गुजारेंगी अपने सारे दिन तो फिर जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर, बच्चों की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी जिस्मानी तरबियत के ऊपर, उनकी तालीमी जरूरियात को पूरा करने के ऊपर आप कैसे आप फोकस कर सकती हैं? नहीं फोकस कर सकती, ठीक है। तो ये तहज्जुद का मतलब ये नहीं है कि जी बाय हुक और बाय क्रुक तहज्जुद पढ़नी, ठीक है। बाय हुक तो कहते हैं कि भाई हाँ भाई आप सीधे रास्ते से तहज्जुद पढ़ रहे हो, और एक होता है बाय क्रुक तहज्जुद पढ़नी, ठीक है ना। बाय क्रुक तहज्जुद पढ़ने का मतलब ये है कि बाकी सारी चीजों को ना दांव पर लगा करके फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसी ये नहीं है हमारे दीन के अंदर, ठीक है। तो तहज्जुद की कोशिश कर लेनी चाहिए, जरूर से कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तो फिर कम अज कम अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह आप अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है लेकिन मैं पढ़नी तो चाहती हूँ ना, अल्लाह मैं आप के सामने मैं अपना दिल रख रही हूँ कि मेरे दिल के अंदर तहज्जुद की तमन्ना है, ठीक है। तो अब आप मेरे लिए जब आसान बना देंगे ना तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। तो ये तड़प और ये इज़्तिराब जो है ना ये नहीं जाना चाहिए कभी, जब ये दिल से नहीं निकलना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो जब ये इज़्तिराब और तड़प दिन में रहती है ना, फिर जैसे ही अल्लाह ताला हालात साजगार करते हैं वो बंदा अमल करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये इज़्तिराब जो है ना वो बेअमली के दौर के अंदर भी रहना जरूरी है, और अमल के दौर के अंदर तो रहना और भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अमल करने के बाद तो फिर इंसान और मुतमईन हो जाता है कि जी बस मैं तो हो गया अल्लाह का वली, ठीक है। तो ये इज़्तिराब और भी ज्यादा तेजी से खत्म होता है, लेकिन बेअमली के दौर के अंदर भी इज़्तिराब की जरूरत है, ठीक है। 6 घंटे लगातार सोना तो मुमकिन नहीं, क्या इस दौरानिये को कम करने का कोई रूहानी तरीका है? सच्ची बात यह है कि इसको कम करने का कोई खास रूहानी तरीका है नहीं, ठीक है? अगर है भी ना तो वो हमारी दस्तरस से बाहर है, ठीक है? उसकी वजह यह है कि उसके लिए आपको इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतना ज्यादा मुराकबा, इतना ज्यादा जो है ना मुजाहिदा करना होता है कि वो हम कर नहीं सकते। इस दौर में हम रहते नहीं है, इतने लंबे मुराकबों वाले दौर में ना हम रहते नहीं है, ठीक है? तो अब आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगी जो कि आपके दौर के अंदर मुमकिन ही नहीं है, या आपके हालात की वजह से मुमकिन ही नहीं है, ठीक है? भाई कुछ लोग रहते हैं इस दौर के अंदर भी 7-7 घंटे मुराकबे करते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं कि जो कि अपने घर बार से बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, राइट? दूर रहते हैं ये लोग। तो ये जो है ना, या तो किताबों में इनका वक्त गुजरता है या मुराकबों में इनका वक्त गुजरता है। फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, मुराकबे करते हैं, फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, मुराकबे करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कुछ सबक पढ़ा देते हैं फिर मुराकबे करते हैं, ठीक है ना? हम और आप तो इस तरह के माहौल में नहीं रहते हैं ना, तो इस वजह से ना ये कोई रूहानी तरीका पहली बात है नहीं कि जो आप करना शुरू हो जाए और उसकी वजह से आपकी नींद कम हो जाए। दूसरा बस बड़ा मसला ये है कि ये जो ज्यादा सोना वगैरह जो है ना, कुछ लोगों में होता है कम सोना कि उनको नींद ही नहीं आ रही होती, हालांकि कोई वो कोई बहुत ज्यादा गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको नींद आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, नींद नहीं आती उनको लेटने के बाद, ठीक है? कुछ तो अपनी गलतियां भी होती हैं कि भाई वो खामखा जो है वो, यानी आप गलत टाइम पे सो गए क्या, इस किस्म की जो कुछ हमने गलतियां कर कर रहे होते हैं, तो उन गलतियों की इसलाह कर लें तो थोड़े हालात तो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो है ना नींद का आना मुश्किल होना, राइट, बजाहिर कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही, या ये कि आप 6 घंटे 7 घंटे सो गए फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, राइट, फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही, बल्कि अब दोबारा अगर लेटेंगी तो फिर सो जाएंगी, ठीक है ना? तो ये चीज जो है ना, ये मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स। और ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ना, ये बचपन में ये बीमारी लग जाती है, बचपन में गलतियां कुछ हो रही होती हैं हमारे घरों के अंदर, ठीक है? बल्कि समझने के यानी हर घर में हो रही होती हैं। क्यों? बस वही बात है कि रात को छोटा कर दिया गया है आर्टिफिशियल लाइटिंग के जरिए से, राइट, इन गैजेट्स के और टेलीविजन के और न जाने इस किस्म की जो सारी खराफात माशाल्लाह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमारी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बन गई है, तो इनकी वजह से ना स्लीप डिसऑर्डर से बचना भी बड़ा मुश्किल काम, ठीक है? तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो पैदा हो जाते हैं आजकल के जमाने की वजह से, फिर उसके ऊपर हमारी गलतियों की वजह से जो कि हम ऑन टॉप ऑफ जमाना करते हैं, ठीक है? तो ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो है ना, फिर ये फिर नहीं खत्म होते, ये साथ नहीं छोड़ते, ठीक है? तो अब इसका हल जो है ना वो कोई बताहिर है नहीं, सवाय इसके कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें कि अल्लाह बस जितना कर रही हूँ उसी को कबूल कर लें, राइट, और बस आप थोड़ी मदद फरमा दें, थोड़ा सा और करने की तौफीक अता फरमा दें, और थोड़ा सा जरा जरा मदद कर दें, और राइट। तो ये जो रोना गिड़गड़ाना ये अल्लाह ताला को बस पसंद आ जाता है, अल्लाह ताला इसी के बदले ही जो है ना वो फिर हमें, ठीक है, यानी आमाल करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, ठीक है? लेकिन रोना मुश्किल नहीं है, ये रोना जो है ना ये हम कर सकते हैं अगर हम चंद चीजें अपनी फिक्स कर लें ना, तो रोना कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी नींद को कम करने के बजाय और तहज्जुद में जो है ना वो यानी किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक तहज्जुद पढ़ने की बजाय जो है ना ये रोना सीखने किसी तरीके से, ठीक है? ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम, ठीक है? रोना सीख लें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा उसको कुछ भी तो नहीं आता, कुछ भी तो नहीं कर सकता, राइट, लेकिन उसको रोना आता है ना, तो बस अब मुझे चुप कराने की कोशिश ना करें, ये बहुत बुरी बात है। आपने एक सवाल किया है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है? जज़ाकअल्लाह खैर के, ये एक गलत तरीका है, ठीक है? ये आइंदा नहीं कीजिएगा, सही है? सुने, जैसे जितना भी मैं बोलता रहूँ आप सुने, ये तरीका नहीं होता कि उस्ताद के साथ फिर उसको इस तरह का इंप्रेशन दिया जाए, ठीक है? तो इसलाह भी करनी पड़ती है ना, इससे गलती करेंगी तो बस रोना सीख लें, ठीक है? और रोना शुरू कर देते हैं, बस काफ़ी है इंशाल्लाह। छोटे बच्चों की वजह से लेट सोते हैं, जल्दी सुला दें तो क्लास नहीं लेने देते। हाँ, तो बस ये स्लीप डिसऑर्डर्स और बच्चों के टाइमिंग्स की जो जो मसले चल रहे हैं, तो इस इसके साथ बस हमने इसके साथ ही रहना है, ठीक है ना। यानी ये चीज़ें ये दूर नहीं हो सकती, ये नहीं जाएंगी दूर, ठीक है। तो बस बेहतर ये है कि हम रोना सीख लें। रोने के बदले अल्लाह ताला जो है वो दिलों को धो देते हैं। जब दिलों को धो देंगे हमारे आंसुओं से, ठीक है, तो वो जो लाइट बल्ब वाली बात हुई थी पिछली क्लास के अंदर, वो लाइट बल्ब जल जाएगा। जब लाइट बल्ब जल जाएगा ना, तो ये इन सारी मुसीबतों के मौजूदगी के बावजूद हम अपना रास्ता निकालना सीख जाएंगे, लाइट बल्ब जलाने के लिए सारे काम करने, ठीक है ना। बाकी ये कि जो आपने लिखा है कि नहीं मकसद ये नहीं था, तो मकसद बेशक आपका अच्छा ही होगा, लेकिन तरीका भी जरूरी होता है ना। तो तरीका गलत हो और मकसद अच्छा हो, तो ये तो इमरान खान साहब वाली बात हो गई, नीयत बड़ी अच्छी है और तरीका गलत है, उसका क्या करें भैया आपकी नीयत का, ठीक है। तो इस वजह से हमारा काम है आपके जो अगर कोई तरीके की गलती भी देखें तो उसकी भी इसलाह कर दें, ठीक है। तो ये जजाकअल्लाह कहने के लिए सब्र करना चाहिए, जब बात मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद जजाकअल्लाह कहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और अपने, अच्छा वजह क्या होती है, अब यहाँ पर असल वजह, ठीक है, असल वजह ये सारी मुखालिफतों की क्या होती है, इसको कर पढ़ करके इंशाल्लाह खत्म करते हैं क्लास को, क्योंकि जाना भी है साथ इसको। तो असल वजह क्या लिखी है कि ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। क्या अल्लाह ताला ने फरमाया था, इन्नहा उलाई, बेशक ये लोग, युहिब्बून अल आजिला, उजलत पसंद है, जल्दी चाहते हैं चीजों को, और जल्दी यहां पर दुनिया की जिंदगी, क्योंकि आखिरत जो है वो मुअख्खर है और दुनिया की जिंदगी जो है वो जल्दी है, ठीक है ना। तो ये जल्दी चाहते हैं, दुनिया के अंदर रिवॉर्ड चाहते हैं, दुनिया के फायदे चाहते हैं। तो इसी को इन्होंने तर्जुमा कैसे किया इस तफसीर के अंदर, कि ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। अगर किसी को याद हो कि इस आजिज ने अभी जुमे के दिन क्या बात करी थी कि ये जो उलमा की मुखालिफत करने वाले हैं, ठीक है, जो आजकल खास तौर पर और वैसे ही जो उलमा की मुखालफत करते हैं ना, इनकी खास निशानियां क्या होती हैं, इनकी खास निशानियां ये होती हैं कि इनकी प्रायोरिटीज होती हैं मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो जाए, राइट, इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मौलवी लोग जो होते हैं ना, इन मौलवी लोगों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, हम जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की नहीं कर सकेंगे, ठीक है, हम लोगों के अकवाम आलम के शाना बशाना नहीं चल सकेंगे, ठीक है ना। ये इनकी फिक्रें होती हैं, ये मुहिब्बे वतन होते हैं, मुहिब्बे वतन होते हैं, ठीक है ना। इनमें से हर कोई जो है वो एजेंट नहीं होता दूसरों का, मुहिब्बे वतन होता है, लेकिन फिर भी ये उलमा की मुखालफत क्यों करते हैं, इन वजूहात की वजह से कर रहे होते हैं। और ये वजूहात किसकी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं, दुनिया की मोहब्बत की तरफ पॉइंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये खास जो है ना वो उलमा की मुखालफत करने वालों की पहचान होती है कि उनकी यही प्रायोरिटीज होती है, जबकि उलमा की जो हिमायत कर रहे होते हैं उनकी प्रायोरिटीज, उनकी भी प्रायोरिटीज होती हैं कि भाई इकोनॉमी अच्छी हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, उनकी भी होती हैं, लेकिन उनकी नंबर वन प्रायोरिटीज ये नहीं होती। नंबर वन प्रायोरिटीज क्या होती हैं, मुल्क के अंदर बेहयाई का माहौल ना हो, मुल्क के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली बातें ना हो, राइट, और जो है वो जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं उनके एजेंट्स जो है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट ना कर रहे हो, कादियानी मिसाल के तौर पर, राइट, उनके लिए जो है वो आप बॉर्डर ना खोल दें कि बॉर्डर से जो है वो कादियानी अपनी मन मर्जी के हिसाब से आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब ये बात आप किसी दूसरे दुनियादार बंदे को जाके बोले ना कि भाई देखो कादियानी जो है ना वो आना शुरू हो गए, राइट, वो कहेगा तो सो वॉट, क्या हो गया अगर कादियानी आना शुरू हो गए, राइट। आप उनके बोले कि जी बेहयाई बहुत हो गई है, बढ़ रही है पहले के मुकाबले, तो वो क्या जवाब देगा, तो क्या हो गया अगर बेहयाई बढ़, मतलब बेहयाई को कहेगा क्या हो गया, ये तो कल्चर होता है, ये तो लोगों की मर्जी होती है, जैसे चाहे वो अपना लिबास पहने, जैसे चाहे वो अपने घर में रहें, जैसे चाहे वो घर के बाहर रहें, उनके नजदीक ये चीजें अहमियत ही नहीं रखती हैं, राइट। हया बेहया और इल्हाद और ईमान और कुफर, ये तो उनकी लैंग्वेज के अंदर ही उसके इनकी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो साफ फर्क होता है इन दोनों कैंपों के दरमियान, एक ईमान वाला कैंप होता है और एक निफाक वाला कैंप होता है। निफाक वाले कैंप के अंदर दुनिया की मोहब्बत गालिब होती है, और ईमान वाले कैंप के अंदर आखिरत की मोहब्बत गालिब होती है, आखिरत की फिक्र गालिब होती है, ठीक है। फिक्र दोनों को लगी होती है, इनको भी फिक्र लगी होती है, उनको भी फिक्र लगी होती है, ठीक है। तो अब हमारा फैसला ये होना चाहिए कि हम इन दोनों कैंपों में से कौन से वाले कैंप के अंदर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और आखिरत के अंदर हमारा हशर किस कैंप वालों के साथ होना हम पसंद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत के कैंप वालों में बना दे। वा आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।